डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड़ा सतगुर नानक जिन कल राखे मेरी। बेसुमार अथाह अगनत अतोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में उपस्थित गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की विशेष कृपा है हम लोगों के ऊपर कि उन्होंने इस जीवन से सभी दुखों को दूर करने के लिए हमें सुखमणि प्रदान किए। जो व्यक्ति सुखमणि का ओट आसरा लेता है सुखमणि की कथा को सुनता है वह सुनते सुनते मोक्ष को प्राप्त होता है। सुखमणि अर्थात परम सुख, सुखमणि अर्थात परमात्मा, सबसे उत्तम हर की कथा। सुखमणि में निरोल हरि की कथा है और जो व्यक्ति सुखमणि के माध्यम से हरि की कथा को सुनता है वो सुनते सुनते सभी दुखों से छुटकारा पा करके परम आनंद स्वरूप परमात्मा को पाकर जीवन मुक्त हो जाता है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जीवन के हरेक रहस्यों को सुखमणि में बताए हैं कि मनुष्य हमेशा या तो पास्ट में जीता है या फ्यूचर में जीता है। जो बीत गया है उसका मन में चिंतन करते रहता है, पश्चाताप करता है, हमने इसके साथ ऐसा नहीं बोलना था, हमने इसके साथ ठगी नहीं करना था। जो बीत गया है उसका पश्चाताप करता है और जो भविष्य में आने वाला है उसके प्रति चिंता है कि हम टैक्स नहीं देंगे तो क्या होगा, बच्चे छोटे छोटे हैं, बिजनेस नहीं चलेगा तो कल क्या होगा, नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, भविष्य की चिंताएं और जो बीत गया है उसका पश्चाताप। वर्तमान में व्यक्ति जीता नहीं है और जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है, वर्तमान का भाव ये है कि परमात्मा ने कल रखा है ठीक ठाक से, रोटी दिया है, कपड़ा दिया है, रहने के लिए कोई जगह दिया है, आज भी दे रहा है, तो एक निरंकार के ऊपर भरोसा कि वो कल भी देगा। पहले देते हैं रिजक समाहा, पिछों देते हैं जंतु पा। प्रभु परमात्मा वाहे गुरु पर टोटल विश्वास, पूरा भरोसा। जब व्यक्ति प्रभु पर पूरा भरोसा करता है वह व्यक्ति वर्तमान में जीता है और जो वर्तमान में जीता है वो परमात्मा में जीता है, जो परमात्मा में जीता है वो सदा आनंदित रहता है, उसको दुख स्पर्श भी नहीं करता। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सुखमणि के माध्यम से उपदेश कर रहे हैं। सहस खटे लख को उठ धावे, त्रिपत ना आवे माया पाछे पावे। सहस खटे लख को उठ धावे, त्रिपत ना आवे माया पाछे पावे। जब किसी व्यक्ति को $1,000 हो जाता है, पहले तो कुछ नहीं था, तो परमात्मा से प्रार्थना किया, हे सच्चे पातशाह मुझे $1,000 हो जाए तो मैं आनंदित रहूँगा, हमारी रोजी रोटी अच्छी तरह चल पड़ेगी। लेकिन ज्यों ही $1,000 हुआ तो लाखों डॉलर के लिए जो है मन में इच्छा, वासना, तृष्णा पैदा हो जाता है और उसके लिए दौड़ पड़ता है। जो हजार है उससे तृप्त नहीं है। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, कल लाख हो जाएगा, परसों करोड़ हो जाएगा, तो कल भी आनंदित होंगे, परसों भी आनंदित होंगे। आज हजार है, आज हजार का तो आनंद लो, कल की आशा में, भविष्य की चिंता में हम वर्तमान को क्यों गंवा दें। जीने की एक ही कला है कि प्रत्येक समय प्रत्येक क्षण आनंदित रहना। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परिस्थितियां एक जैसा नहीं होता। आज यदि किसी को मान मिल रहा है तो जल्दी ही उसको अपमान भी मिलना है, क्योंकि मान अपमान दोनों इकट्ठे ही चलता है। आज कोई सुखी है तो कल दुखी अवश्य होगा, अभी दिन है तो रात भी अवश्य होगा। ये तो सिक्के के दो पहलू हैं। रात होने पर चिंता नहीं करना है, विपत्ति होने पर चिंता नहीं करना है, क्योंकि जल्दी दिन आने वाली है, जल्दी सुख आने वाला है। और सुख होने पर घमंड नहीं करना है, क्योंकि जल्दी दुख आने वाला है। सत्संगी वो है, गुरुमुख वो है जो सुख दुख से ऊपर उठ जाता है, लाभ हानि से ऊपर उठ जाता है और गुरुमुख बन जाता है। गुरुमुख का भाव ये है कि जब राज देह ता कवन बढ़ाई, जब भीख मंगावे तो क्या घट जाई। हर एक परिस्थिति में प्रभु की आज्ञा भाना मान करके जीना, यही जीवन की कला है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज तृष्णालु पुरुष, लोभी पुरुष, जो तृप्त नहीं रहता है, जो हमेशा वासना में जी रहा है, आशा में जी रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं कि सहस खटे लख को उठ धावे, त्रिपत ना आवे माया पाछे पावे। वह व्यक्ति के पास जितना मर्जी कुछ हो जाए वो तृप्त नहीं होता, सुखी नहीं होता। एक समय की बात है कि सिकंदर के मन में आया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। हर एक लोग आके कहते थे कि बादशाह तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, राजा हो। वो अहंकार से फिरता था कि हाँ हाँ मैं राजा हूँ। किसी ने आके कहा कि राजन, समुद्र जो है यह भी नदियों का राजा है। वो दुखी हो गया। व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे घर में मर्सिडीज कार है, ठीक है, और सबके घर में छोटे कार हों, तब तक तो ठीक। यदि उसको ये आके बता दे कि पड़ोसी के घर में ऊंचा मॉडल वाला मर्सिडीज आ गया है, बस उसी वेले दुख। उसका कारण ये है कि हम अपने जैसा या अपने से अधिक सुखी किसी को देखना नहीं चाहते, ये अज्ञानता है। सिकंदर को जब बताया कि नदियों का राजा समुद्र है, तो सिकंदर ने अपने फौज को लेकर समुद्र के किनारे आया और समुद्र से कहता है तुम मेरे से युद्ध कर लो और नहीं तो तुमको हम मार दूंगा। समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके सिकंदर के सामने आया और समुद्र देवता कहता है, वरुण देवता, कि हे राजन, हमें युद्ध करने का कोई शौक नहीं है, तुम ही राजा रहो, हमारे और तुम्हारे के कारण हजारों लोग इस युद्ध में मरेंगे, मैं हिंसा को पसंद नहीं करता। साथ संगत जी, इस जो भी आपके छोटे बच्चे हैं उसको कंट्रोल में रखो, जो बच्चों को लाते हैं और कंट्रोल में नहीं रखते उनको पाप चढ़ता है, इसलिए पाप से बचो। और कथा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं, कौन सी बात आपके हृदय में लग जाए आपका जीवन बदल जाए, क्योंकि सबसे उत्तम हर की कथा। यहाँ पर समुद्र कहता है कि हे सिकंदर, तुम युद्ध ना करो, तू ही राजा बना रहो, मैं तुम्हारे अधीन रहता हूँ, मैं हिंसा को पसंद नहीं करता, हमारे तुम्हारे कारण हजारों लोग मरेंगे, तुम चक्रवर्ती सम्राट रहो, मैं तुम्हारे अधीन रहता हूँ। सिकंदर बड़ा खुश हुआ, कहता है ठीक है तुम हमारे अधीन रहोगे लेकिन मैं टैक्स भी लूँगा। समुद्र ने कहा ठीक है मैं टैक्स दूँगा। टैक्स के बदले समुद्र ने एक थाली में हीरे जवाहरात लेकर के सिकंदर को दिया। सिकंदर खुश हो गया और अपने मंत्री को बोला इसको लेकर के ले जाओ खजाने में रख दो, बड़ा खुश होकर जा रहा था। लेकिन उसके चित्त में आया कि मैं इतना बड़ा राजा और समुद्र ने एक छोटे से थाली में हीरे जवाहरात दिया है, ये मेरा तो अपमान है। वो फिर आ गया युद्ध करने के लिए। वहां पर समुद्र देवता ने कहा कि ठीक है राजन, तुमको हीरे जवाहरात और दे देता हूं। समुद्र देवता ने समुद्र के किनारे हीरे जवाहरात का ढेर लगा दिया कि ले जाओ जितना ले जाना है। सिकंदर ने अपने मंत्रियों को हुक्म दिया कि जितने भी झोली है जितना भी थैला है सब भर लो और भर करके ले जाओ। जब वो सारी झोलियों को भर दिया फिर भी देखता है काफी पड़ा हुआ है, क्योंकि तृष्णा जो है तृष्णा बिरले ही की बुझी है, लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ पाप का जड़ है। वहां पर उसके चित्त में आया, उसने समुद्र को बोला ऐसा कर तुम मेरे लिए एक बेड़ी ले आ जिसमें मैं हीरे जवाहरात लाद करके मैं घर ले जाऊंगा। समुद्र देवता ने एक छोटी सी बेड़ी उसको दिया, कहता है ठीक है इसमें हीरे जवाहरात डाल लो। सिकंदर कहता है कि इतना ज्यादा हीरा जवाहरात है और छोटी सी बेड़ी में मैं कैसे सारा भर के ले जाऊं। समुद्र देवता कहता है राजन चिंता ना करो, इसमें एक मन हीरे जवाहरात डालोगे, एक टन डालोगे तो दो टन का जगह बन जाएगा, इसमें 10 टन हीरे जवाहरात डालोगे ये 20 टन का जगह बन जाएगा। वो राजा बड़ा खुश हुआ, सारे मंत्रीगण सारे कर्मचारी बड़े खुश हुए। वो सारा हीरा जवाहरात उसमें उस बेड़ी में डाली जा रहा है और वह जो बेड़ी है उसकी कैपेसिटी भी बढ़ता जा रहा है। वो डालता जा रहा है, डालते 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 एक समय ऐसा आया सिकंदर वृद्ध हो गया, उसको पता ही नहीं चला कि ले भी जाना है, वो डाली जा रहा है। और अंत में भारत से कुछ फौजी लोग थे, उन लोगों ने चढ़ाई किया और तीर से वो मारा गया। तृष्णा का स्वभाव ये है कि जितना है उससे संतुष्ट नहीं होना और इकट्ठा करना, जितना है उसको उपयोग नहीं करना। इस मामले में अंग्रेज लोग बहुत अच्छे, 5 दिन कमाया और 6ठे 7वें दिन खा पी के बस मस्त, फिर 7वें दिन जो है अपना कमाई। हम लोग जो है पुत्र के लिए पोतरे के लिए जिसने जूते मारने हैं, हमें कोई फूल के हार नहीं पहनाने हैं उसने। हाँ लड़कियां अवश्य पूछती हैं दूर रह करके भी, ये लड़के का मतलब होता है जो लड़के तुमसे ले, जो तुम्हारा धन है ना प्रेम से नहीं लेगा, जो सारी जिंदगी बहु परपंच कर पर धन ल्यावे, सुत दारा स्यों आन लुटावे, मन मेरे भूले कपट ना की जाए, अंत निवेरा तेरे जी पे लीजिए। जो इधर उधर करके खट जमा किए हो ना धन, वो पुत्र ये नहीं कहेगा कि पिताजी अब हमारे नाम करा दोगे, ये नहीं बोलेगा। लड़के का मतलब ये होता है जो तुमको लड़के ले, मार पीट करके बाहर कर दे और रजिस्ट्री करा ले सारे धन। इसीलिए जितना परमात्मा ने दिया है उसका आनंद, उसका शुक्र मनाओ, और कल मान लेते हैं बहुत हो जाता है तो कल और आनंद मनाएंगे, परसों और ज़्यादा होता है और मनाएंगे, लेकिन कल की आशा में, परसों की आशा में, भविष्य की आशा में वर्तमान को क्यों दुखी करें। इसी चीज को साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं सुखमनी के माध्यम से, सहस खटे लख को उठ धावे, त्रिपत ना आवे माया पाछे पावे। यह तृष्णा का ऐसा स्वभाव है, तृष्णा का ऐसा पेट है, तृष्णा का स्वभाव अग्नि जैसा है। अग्नि में जितना लकड़ी डालो वो अग्नि और बढ़ता है। तृष्णा और काम ये दोनों का ऐसा ही स्वभाव है। जितना आदमी के पास धन आता है उतना ही ज़्यादा और इकट्ठा करने के लिए वो बेचैन होता है। कोई कोई जो गुरु घर में जिसने अपने जीवन को सौंप दिया है वही व्यक्ति माया से बच सकता है। यहाँ पर देखो हमारे जो आदरणीय विहंगम संत यहाँ हैं, 2 बजे उठ करके कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन। यहाँ पर आप सुबह से ही जो है सो पहले सुखमनी साहब का पाठ और उसके बाद आशा दीवार का कीर्तन, बहुत अच्छा। यहाँ पर जब मैं 3 बजे सुबह ही जब आदरणीय महंत जी से कीर्तन सुनते हैं, कमरे में ही सुनते सुनते मैं आनंदित होता। इन लोगों को ये जो संत महापुरुष यहाँ पर घर छोड़ करके अपने माता पिता भाई बहन को छोड़ करके, आप जपह अवरह नाम जपावह, ये आप स्वयं भक्ति करते हैं और आप लोगों के जीवन को ऊंचा उठाते हैं, ये नमस्कार करने के योग्य हैं, ये समझो के परमात्मा के एजेंट हैं, समझे कि नहीं। और ये बहुत भाग्यशाली हैं, हम लोग इनका दर्शन करके अपने को कृतार्थ मानना चाहिए। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, सहस खटे लख को उठ धावे, त्रिपत ना आवे माया पाछे पावे। तृष्णा बिरले ही की बुझी है, कोट जोरे लाख करोरे मन ना होरे, परे परे ही को लुझी है। आगे से आगे, आगे से आगे, रात दिन मारा मारा फिरता है आदमी, वो जो धन है उसको उपयोग नहीं करता। जितने बड़े बड़े अमीर लोग हैं उसको डॉक्टरों ने मना किया है कि ड्राई फ्रूट नहीं खाना है, घी नहीं खाना है, दूध नहीं खाना है, मलाई नहीं खाना, मक्खन नहीं खाना, क्या खाना है, सूखी रोटी खाना है और सूखी दाल। लो तो किस लिए जोरा था, धन तो इसलिए बनाया था ना कि खूब खाएंगे जो है, रस मलाई खाएंगे, मक्खन खाएंगे, इसलिए खाएंगे। लेकिन बहुत धन जोड़ने के कारण डायबिटीज हो गया है, तरह तरह के हाई ब्लड प्रेशर, किडनी खराब, अब जो है सो सिर्फ मूंगी का दाल और सूखी रोटी खाना, वो भी ज़्यादा नहीं, 2 ही खाना है।
जो दूसरा देख रहा है, खा रहे हैं, उसको देख के जलना है। मैं देखता हूँ लोग जलते रहते, मैं खा नहीं सकता, और ये गरीब होके मेरे से अच्छा खाना खा रहा है। जो तुमने पाप किया है ना, उस पाप के कारण रोग लगा है, और वो रोग जो है तुमको खाने नहीं दे रहा है कुछ। माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरियो फिरत है। ये जो माटी का पुतला जो है, सो माया के वशीभूत होकर के मारा मारा फिर रहा है, मारा ये प्राप्त कर ले, ये प्राप्त कर ले, ये प्राप्त कर ले। एक समय की बात है कि चार आदमी चल पड़ा, चारों दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, कि चलते हैं परदेश, चलते हैं, चारों मिल के काम करेंगे, और जो धन आएगा हम लोग चारों बांट के खाएंगे पिएंगे, आराम करेंगे। चलते चलते जी अचानक चारों ने क्या देखा कि एक थैली है, सोने की मोहरें, उसको उठाया। चारों ने विचार करता है अलग अलग मन में कि ये तो बट करके थोड़ा थोड़ा रह जाएगा, मुझे अकेले को मिल जाता तो कितना अच्छा था। वो दो जो है सोने की थैली के पास रहा और दो को कहा तुम ऐसा करो, थोड़ा सा आटा वगैरह खरीद के ले आओ, थोड़ा सा आटा है मैं उसका रोटी बना के रखता हूं। उसने क्या सोचा दोनों ने कि हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें जहर डाल देते हैं, वो जो दोनों आएगा ये रोटी को खाएगा मर जाएगा, और हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। वो जी जो थोड़ा सा आटा था उसको जल्दी जल्दी उसमें जहर डाल करके रोटी बना के रख दिया। फिर उसका एक का मन बेईमान हो गया दो में, वो कहता है कि ये थैली सारा मेरा हो जाता तो कितना अच्छा, इसमें से आधा बट जाएगा ये बड़ी दुख की बात है। उसने क्या किया कि वहां पर अग्नि जलाया रोटी बनाने के लिए, एक ने उसको अग्नि में डालने लगा जोर से, उसने हट के दूसरे को डालने लगा, इसी बीच में ने दोनों जो है एक दूसरे को जान से मार दिया, दोनों मर गए। वो जो दो गया था बाहर, वो सोच रहा है कि ये जो दोनों रोटी बना रहे हैं, बना ये चार में बट जाएगा, बहुत थोड़ा है, उन लोगों को किसी बहाने भेजेंगे और हम दोनों जो है सो इसको लेकर के सोने की मोहरे लेके भाग जाएंगे। वो आके देखता क्या है कि वो दोनों मरे पड़े। वो जी सोचा कि धन हम बांटेंगे आपस में, दोनों ने पहले रोटी खाया, रोटी खा के बांटेंगे धन, रोटी खाया उसमें जहर था, वो दोनों मर गए, दोनों लड़के मर गया, दोनों जहर खा गए, हाथ कुछ नहीं लगा। ये तृष्णा का ऐसा स्वभाव है ना, लोभी आदमी, लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ पाप का जड़ है। लोभी व्यक्ति कितना गिर सकता है उसका कोई कह नहीं सकते। चलते चलते लोग, हमारी बहनें माताएं कान में बाली पहनी होती, हार होता है, चाकू दिखा करके हार छीन लेते हैं, कभी कभी चाकू मार भी देते हैं। लोभ के वशीभूत होकर के लोग नकली दवाइयां बनाते हैं, खाने पीने के चीजों में मिलावट करते हैं। ये लोभी आदमी जो है का लोभी का वैसा होना कीजिए, लोभी व्यक्ति का जो है सो कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कितना गिर सकता है, कितना पाप कर सकता है उसका कोई पता नहीं। अनक भोग बिखिया के करे नह तृप्तावे खप खप मरे, अनक भोग बिखिया के करे। यह जो जीव है लोभ के वशीभूत होकर के, लोभ के चंगुल में फंस करके वो विषयों में रचा रहता है, नह तृप्तावे, वो तृप्त नहीं होता, क्योंकि वासनाएं अनंत हैं और अनंत वासनाओं की पूर्ति सीमित साधनों से नहीं हो सकता। हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो थोड़े हैं और वासनाएं अनंत हैं। अनंत वासनाओं की पूर्ति सीमित साधनों से नहीं हो सकता, इसीलिए साध संगत जी हम लोगों को गुरु वाला बनना है। हम लोग अमृत छके, मैं देखता हूँ हमारे सिख भाई होकर के जब भी केस कटाते हैं ना, तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। हमारा तो ये था कि जो हिंदू हैं, ईसाई हैं और संप्रदाय के लोग हैं, हमारा इतना उत्तम जीवन हो, इतनी अच्छी सिखी हो कि और संप्रदाय के लोग प्रभावित होकर के सिख बने, गुरसिख बने। हम अपना निशान मिटा रहे हैं, धन के लालच में विदेश तो आ गए हैं, लेकिन कोई घर होगा भूला भटका जिसका कोई ना कोई केस ना कटाया हो। क्योंकि मुझको ले जाते हैं ना प्यार से घरों में, लोग भोजन खिलाते हैं, लेकिन जब देने आता है ना भोजन, तो कोई किसी का लड़का केस कटा है, किसी का भाई कटा हुआ है केस, और सिख नाम पूछते हैं तो ये सिंह बताते हैं। जो केस कटा है तो सिंह नाम की क्या चीज़ है। इसीलिए अमृत छकना है। और आदरणीय ब्रह्मज्ञानी बाबा जी का तो बाहर जो भी जाते हैं, मैं समझता हूं कि अपने जीवन में ये देखा है कि बाबा जी जितनी प्रेरणा कोई संत महापुरुष नहीं करते गुरसिखी से जोड़ने के लिए, मेरा अपना अनुभव है। हर एक को बाबा जी प्रेरणा कर करके, सिख संप्रदाय को तो छोड़ो और संप्रदाय के लोगों को भी बाबा जी जो है सो सिखी की तरफ प्रेरित करते हैं। ये बाबा जी की महानता है, विशाल हृदय है। बाबा जी सबको अपने में समेट लेते हैं, और महान पुरुष वही है जो सबको गुरु के चरणों में जोड़ता है। जुड़ने वाला ही महान होता है, तोड़ने वाला महान कहाँ हो सकता है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, नह तृप्तावे खप खप मरे। आदमी जो है खप खप के मर जाता है सरकार को टैक्स दे दे के, और बाद में ये आशा से कि पुत्र सुख देगा, और पुत्र जो है केस कटा करके लड़ करके माँ को अलग कर देता है, पिता को अलग कर देता है, और संपत्ति को शराब पी पी के खत्म कर देता है। बिना संतोख नहीं को राजय, सुपन मनोरथ वृथे सब काजय। बिना संतोख नहीं को राजय, सुपन मनोरथ वृथे सब काजय। संतोष ही सुख का कारण है। भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा, आप बताएं सबसे बड़ा योगी कौन है, जो जंगल में जा करके अन्न पानी छोड़ करके एक पांव पर जो तपस्या करता है वो बड़ा योगी है। भगवान कृष्ण कहते नहीं, आदमी जहां भी है लेकिन जो संतुष्ट है, संतुष्ट सततम योगी, जो व्यक्ति आए हरख न गए सो, बिना संतोष नहीं को राजय, जिसके मन में संतोष है वह व्यक्ति एवर हमेशा वो राजा है, संतुष्ट सततम योगी। यदि तुमको परमात्मा ने संतोष रूपी धन दिया है तो तुम योगी हो, तुम राजा हो, तुम सम्राट हो। आप देखना कभी कभी लालच में आकर के व्यक्ति जो है इतना नीचे गिर जाता है कि दास बन जाता है। दास बनना था ईश्वर का, दास बनना था गुरु का, लेकिन धन के लालच में आकर के व्यक्ति जो है लोगों का दास बन जाता है। धन के लालच में आकर के गलत का साथ देता है आदमी। मैं देखा हूँ, रोज देखता हूँ अपने को गुरसिख कहलाने वाला, वो भी धन के लालच में, मान के लालच में आकर के गलत व्यक्ति का साथ देता है। मैं कहता हूँ मर जाना अच्छा है, लेकिन गलत व्यक्ति का साथ देना जो है ये उचित नहीं है। सिख वो है जो आन और शान से जीता है, क्योंकि गुरु महाराज ने ऐसी सिख, घमंड नहीं, हमें अपनी जो है सो शान से रहना है, क्योंकि संतोष है। संतोषी व्यक्ति जो है हमेशा संतुष्ट रहता है, और वो जानता है कि हमारे सिर पर गुरु का हाथ है। जिसने अमृत छका है, गुरु वाला हो गया है, उसको कोई भय और चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु उसको तार देंगे, गुरु हमेशा उसको बचाएंगे। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, बिना संतोष नहीं को राजय, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। एक समय की बात है, एक राजा भोज हुआ है, बिना संतोष नहीं कोई राजे। राजा भोज हुआ, राजा भोज पूछता है लोगों से कि मनुष्य के अंदर कौन ऐसा दलदल है इस संसार में, जिस दलदल में फंस करके व्यक्ति निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राजा भोज बहुत बड़ा प्रतापी राजा हुआ है, उसके पास 1400 विद्वान हमेशा रहा करते थे, हर एक तरह के विद्वान 1400। एक दिन राजा सारे विद्वानों को बुलाया और कहता है, कौन ऐसा दलदल है जिसमें फंस करके व्यक्ति निकल नहीं पाता है। सारे राजाओं ने, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन राजा को संतुष्ट नहीं हुआ। राजा को जो सबसे बड़ा पुरोहित था, पंडित, उससे पूछा और कहा कि मुझे 7 दिन के अंदर ये जवाब मिलनी चाहिए, और यदि 7 दिन के अंदर जवाब नहीं मिला तो मैं तुमको राज से निकाल दूंगा। 4 दिन हो गया, 5वें दिन वो जो राजगुरु था वो चिंता में हो आकर के बाहर निकल गया जंगल की तरफ, और एक दरख्त के नीचे बैठा बहुत सोच रहा है, 2 दिन के बाद हमारी मौत हो जानी है, और कोई ऐसा उत्तर नहीं है। कौन ऐसा दुनिया में चीज है जो जिस दलदल में फंस के आदमी निकलता नहीं। देखते देखते उधर से देखता क्या है, एक भेड़ बकरियों को चराने वाला आ रहा है। वो आकर के राजा, उस जो राज पुरोहित था ब्राह्मण, उसको नमस्कार किया, राजगुरु को, आप क्या चिंता कर रहे हो, मैं देख रहा हूं बहुत चिंतित हो। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, इसको ठीक से सुनना, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। पाप से लक्ष्मी कभी नहीं टिकता। जिसके घर में शराबी होते हैं लोग, पर स्त्री से संबंध होता है, जितना मर्जी कमा ले वो घर जो है आबाद नहीं होगा, क्लेश होगा, वो घर जो है सो वो नरक बन जाता है। पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। वो जो भेड़ चराने वाला अयाली जो था, वो पूछता है, आप चिंतित क्यों हैं? कहते, मैं क्या बताऊं, राजा ने एक ऐसा प्रश्न किया है जिसका उत्तर मेरे पास नहीं। कहता, कौन ऐसा दलदल है जिसमें फंस के मनुष्य निकलता नहीं। वहां पर वो भेड़ चराने वाला कहता, इसमें चिंता की क्या बात है, इसका हल मैं कर दूंगा टाइम पाकर, तुम मेरे साथ आओ। कहते हैं कि तुम राजगुरु हो, तुमको थोड़ा सा तनख्वाह मिलता है और तुम चाकरी करते हो राजा का, जैसा राजा कहता है तुम वैसा जो है पत्री देख के बताते रहते हो, आज मस्या है, आज पूर्णमासी है, आज ये है, आज वो है, और राजा तुम पर हुक्म डालता है, तुम ऐसा करो उसकी नौकरी छोड़ दो, कह दो हमें नौकरी करनी नहीं। वो अयाली कहता है, मेरे पास हीरा है, ये पारस पत्थर है, और पारस पत्थर मैं तुमको दे दूंगा, और मैं चाहता हूं, मैं तो सन्यासी हूं, मैं शादी किया नहीं हूं, मैं चाहता हूं कोई योग्य शिष्य होने मेरा, तो उसको ये पारस पत्थर दे दे, और रोज क्विंटल जो है लोहा, 2 क्विंटल 10 क्विंटल लोहा खरीद के लाया करो, उसको टच करो, सोना बन जाए, बड़े बड़े महल बना करके मौज लो। नौकरी में कोई सुख होता है, पराधीन सपने सुख नहीं। उसको उपदेश किया, कहते हाँ बात तो ठीक है। तुरंत जो है राजा ने खत लिखा कि मैं राज तुम्हारे राज में नौकरी नहीं करना है, ठीक है, इसके पीछे हो गया, मेरा शिष्य बन जा। हाँ जी, शिष्य बन गया। आगे गया थोड़ा दूर, कहता देखो ऐसा है,
मैं शिष्य तब बनाऊंगा और शिष्य बना करके ये पारस पत्थर जब दूंगा जब तू भेड़ का दूध पिएगा। वो कहता है कि देखो मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण होकर के मैं भेड़ का दूध पीना मेरे लिए उचित नहीं। तो कहता है ठीक है वे जाओ तुम, मैं अपना जाता हूँ। वो जाने लगा तो मन में सोचता है कि इसमें क्या है, थोड़ा सा पश्चाताप कर लेंगे, पाठ कर लेंगे, इसके बारे में क्या है, पाप तो हो ही जाता है। उसको आवाज मारा, दौड़ा दौड़ा गया, कोई बात नहीं भेड़ का दूध दो मैं पी लूंगा। तो कहते देखो वो समय तो अब बीत गया, भेड़ का दूध जो है ऐसा है कि मेरा कुत्ता है, पहले इसको पिलाऊंगा और वो उल्टी करेगा, वो दूध पीना पड़ेगा। कहता है एक काम तो मेरे से नहीं होगा। कहता ठीक है भाई इसमें क्या है, मैं जाता हूं, तुम अपना रास्ता लो, मैं अपना रास्ता लेता हूं। वो जाने लगा जब गरड़िया, तो पंडित सोचता है ये जा रहा है, एक पारस पत्थर जो है मिलने वाला है, इसमें क्या है, वो कुत्ता जो है सो दूध पी करके उल्टी करेगा, मैं भी पी लेंगे, बाद में जो है सो क्या है कुछ तकलीफ हो जाएगा, दवाई वगैरह खा लेंगे, और बताना किसी को थोड़े है, सिर्फ मुझको ही पता होगा ना कि मैंने कुत्ते का पिया हुआ भेड़ का दूध पिया है, और किसी को तो बताना नहीं। फिर आवाज़ मारा उसको, कहता ठीक है मुझे मंजूर है, मुझे वो दूध पिला दो भेड़ का, पहले कुत्ते को पिलाओ फिर उल्टी करेगा वो मैं पी लूँगा। कहता नहीं अब देर हो गया, अब मैं वो जो दूध है जो कुत्ता पी के उल्टी करेगा वो मनुष्य की खोपड़ी में डाल करके, और जो ताज़ा मेंगना है ना, जो मैल है मल जो लैट्रिन भेड़ी बकरियों का ताज़ा, उसको मिला दूंगा, वो पीना पड़ेगा, तब जा करके मैं ये पारस पत्थर दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। कहता ये काम मेरे से नहीं हो। वो जाने लग पड़ा, वो जा करके जो है जी जब जाने लगा मन में सोचता है कि मना इतना मान गया तो थोड़ा सा और मानने की बात है, यदि ये थोड़ा सा पी लेंगे इसमें क्या हर्ज है, किसी ने देख थोड़े रहा है, छिप के पी लेंगे, और पी करके पारस पत्थर मिल रहा है, ऐसे क्विंटलों रोज सोना बनाएंगे और इसका कोई है ही नहीं। कहता ठीक है आप आ जाओ मैं पांव पड़ता हूँ, मुझे शिष्य बना लो और ये पारस पत्थर दे दो। ठीक है ये जो भेड़ का दूध है कुत्ते को पिलाओ, ये उल्टी करेगा, फिर मनुष्य खोपड़ी में डाल करके, और फिर जो है भेड़ बकरियों का जो लैट्रिन है वो भी मिक्स कर दो, मैं पी लेता हूँ, कोई हर्जा नहीं। वो जी उठा करके पीने लग पड़ा, वो जो गरेड़िया था ना उसने हाथ पकड़ लिया, कहता है कि ब्राह्मण यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, ये जाके राजा को बता के आओ। मनुष्य तृष्णा और लोभ के वशीभूत होकर के सारा धर्म बिगाड़ देता है। लोभ के वशीभूत होकर के आदमी नकली जाके शादियां कराता है कि भाई कनाडा में हमको इमिग्रेशन मिले, नकली शादियां। और जिस गुरु को हम सिख भाई कहते हैं हाजर नाजर है जी, इमिग्रेशन के कारण हम उस गुरु के आगे, जिसको हम जीवंत गुरु कहते हैं और अमृत छके हुए लोगों भी जो है झूठा फेरा। मैं कहता हूं कहां कहां होना चाहिए और कहां गिर गए, आप बताओ, यही दलदल है और कोई दलदल नहीं। वो कहता है कि यही दलदल है, लोभ और तृष्णा के दलदल में फंस के मनुष्य कोई दुनिया का ऐसा पाप नहीं है जो नहीं कर सकता। हमारी बहनें माताएं अपना धर्म बेच देती लोभ के कारण, क्या कुछ नहीं, तलाक ताकि ये सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी, दूसरा कर लेंगे, फिर दूसरा को भी दे देंगे, उसका भी हड़प लेंगे। आदमी लोभ के वशीभूत होकर कितना गिर गया है, और इससे बड़ा कोई और दलदल नहीं है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, अनक भोग बिखिया के करे नह तृप्तावे खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राजय सुपन मनोरथ बिरथे सब काजय, नाम रंग सर्व सुख होए। अब गुरु महाराज कह रहे हैं कि यदि तू सुख चाहता है आनंद चाहता है, प्रभु की खुशियां चाहता है, तो नाम का वोट आसरा लो। अब कलु आयो रे एक नाम बोवा हो, अब कलु आयो रे एक नाम बोवा। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी किसे प्राप्त होए। कोई बड़े भागे वालों को जो है ये नाम दान मिलता है। करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश करते हैं कि परमात्मा आप करने वाला है, कर्ता एकमात्र ईश्वर है, और कोई कर्ता इस जगत में नहीं है। करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। कहते हैं कि जो व्यक्ति सदा सदा मन करके, तन करके, जिह्वा करके जो उस निरंकार का जाप करता है, सुमरण करता है, और तृष्णा और लोभ को त्याग करके एक वाहे गुरु का ओट आसरा लेता है, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं वो बड़े भाग वाला है, वही बड़ भागी है और कोई दूसरा नहीं। करण करावन आपे आप, इस जगत में जो भी कुछ हो रहा है यह प्रभु के हुक्म से हो रहा है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। साध संग जी, कल से ध्यान का क्लास शुरू हो रहा है और आज ही शाम को कथा के बाद एड्रेस आप लोग ले ले, और मेंबर करीब करीब पूरे हो गए, दो चार खाली है, वो चाहे तो आप लोग उसमें नाम लिखा सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जपजी साहिब का पाठ करते हैं, सुखमणि का पाठ करते हैं, मन कहाँ कहाँ फिरते रहता है। जो सुखमणि और जपजी साहिब का पाठ का आनंद नहीं हो, उस मन को किस प्रकार से हम केंद्रित करें पाठ में, प्रभु के चरणों में, साहेब गुरु अर्जन देव जी के चरणों में किस प्रकार अपने मन को सौंप दें। क्योंकि मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। गुरु के आगे अपने मन को कैसे बेचना है, कंचन स्यों पाये नहीं तोल, मंदे राम लिया है मोल। इसी चीज को, कुंभे बद्धा जल रहे जलबिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे गुरबिन ज्ञान न होए। यह सारा जो है मन को किस प्रकार से परमात्मा के चरणों में ले जाना है, 7-8 दिन उसी रहस्य को बताया जाएगा। और यदि उस ध्यान को सारा गुरमत के अनुसार, जो ये पंक्ति है पीपा जी का कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवय परम तत् है सतगुर होए लखावे, इसी पंक्ति के ऊपर 9 दिन कथा होगी और उसका अभ्यास नाम का किया जाएगा। यहाँ पर एक कवि ने बहुत अच्छा इस बारे में लिखा है, लोभ के बारे में। लोभ अखवांदा है जग पापा मूल संदा, लोभ दा प्यार दिनों देये विसार जी। एक कवि कह रहा है कि लोभ अखवांदा है जग पापा मूल संदा, पापों का मूल है लोभ। लोभ दा प्यार दिनों देये विसार जी, दिल से जो है लोभ का जो है ख्वाहिश विसार देना है, भुला देना है। लोभ सदा दिल विचों धर्म नो दूर करे, वीरा नो विछोड़े फिक पावे विच प्यार जी। चोरी यारी ठगी अते खून है कराउंदा बहु, इस तो बचाए गुर संगत करतार जी। लोभ को त्याग करके नानक सर गुरुद्वारा में आकर के अपने जीवन को सफल करो। ताते भगत लोभ दा ख्याल दिनों दूर करे, त्याग कर लोभ जस खटिए संसार जी। लोभ का त्याग करके नानक सर गुरुद्वारे में आकर के गुरु वाला बन जाओ, जिससे आपका लोक सुखिए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभु आपे मेले। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।